हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। फैमिली, धृति ने चौंकते हुए अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरान परेशान निगाहों से देखा। हाँ फैमिली, मुझे भी नहीं पता था कि वो आने वाले हैं, वो अचानक ही आ गए। मैं भी उनके इस तरह अचानक आने से बहुत हैरान हूँ और उतना ही परेशान भी हूँ। प्लीज़ उनके सामने एकदम नॉर्मल बिहेव करना, उन्हें हमें देखकर लगना चाहिए कि हमारी लव मैरिज है। बाकी सब मैं संभाल लूँगा, बस तुम इस बात का ध्यान रखना कि उन्हें हमारे रिश्ते पर शक नहीं होना चाहिए। अर्णव की बात सुनकर धृति गहरी निगाहों से उसे देखने लगी, मानो उसका सच और झूठ तौल रही हो। कुछ पल वो यूं ही उसे तकती रही, फिर सिर हिला दिया और उठकर बाथरूम में चली गई। हाथ मुंह धोकर बाहर आई, तब तक अर्णव अपना हुलिया ठीक कर चुका था। उसे देखते ही अर्णव डेट पर रखा उसका दुपट्टा उठाकर उसके पास चला आया। उसने दुपट्टे को उसके गले में डाला, फिर उसने बालों को जल्दी जल्दी अपनी उंगलियों से संवारा। धृति बस टकटकी लगाए भावहीन सी उसे देखती रही। मेरी फैमिली में मेरे दादा दादी, मॉम डैड और बड़ी बहन हैं जिनकी शादी हो गई है। सब बहुत स्वीट हैं। तुम उन्हें इज्जत और प्यार दोगे तो वो तुम्हें दिल से अपना लेंगे, इसलिए उनके सामने बस वही बनकर रहना जो तुम हो। मेरी नाराजगी, मेरा गुस्सा मेरी फैमिली पर मत निकालना, वो इन सब के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हमारे बीच जो भी प्रॉब्लम है हम बाद में अकेले में शॉर्ट आउट कर लेंगे। अभी हमें एक नॉर्मल कपल जैसे बनकर रहना होगा और ये बस कुछ दिनों की बात है। वो तुमसे ही मिलने के लिए आए हैं, कुछ दिनों में चले जाएंगे। तब तक सब संभाल लेना प्लीज, और भूल कर भी उनके सामने आकाश या हमारे रिश्ते की हकीकत का जिक्र मत करना। उसके बालों को सवारते हुए अर्णव ने उसे समझाया, फिर उसकी हथेली थामे आगे बढ़ गया। धृति अब भी टकटकी लगाए उसे देख रही थी और कुछ तो चल रहा था उसके दिमाग में जिससे अभी अर्णव पूरी तरह से अनजान था। दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे तभी उनकी नज़र सामने लिविंग रूम में बैठे लोगों पर पड़ गई। सबकी निगाहें खुद पर टिके देखकर धृति के आगे बढ़ते कदम ठिठक गए और भावहीन चेहरे पर घबराहट के भाव उभर आए। अर्णव को अपना हाथ खींचता हुआ महसूस हुआ तो उसने सिर घुमाकर उसे देखा। धृति, क्या हुआ, रुक क्यों गई, चलो सब इंतजार कर रहे हैं। मैं नहीं जाऊंगी, आप चले जाइए। धृति की घबराहट भरी निगाहें अर्णव की ओर घूम गईं और उसने बेचैनी से ये शब्द कहे। अर्णव पहले तो चौंक गया, फिर उसकी हथेली पर अपनी पकड़ कसते हुए बोला, धृति इतना क्यों घबरा रही हो, कुछ नहीं करेंगे वो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं सब संभाल लूंगा। अभी वो थोड़े नाराज होंगे पर अगर अभी तुम उनसे नहीं मिली तो नाराजगी गुस्से में बदल जाएगी और उन्हें लगेगा कि तुमने उनका अपमान किया है, हालात और बिगड़ जाएंगे, समझो बात को। अर्णव ने बड़े ही प्यार से उसे समझाया तो धृति ने सिर झुका लिया। दोनों नीचे आए तो सब लोग उठकर खड़े हो गए। धृति उनसे कुछ कदमों की दूरी पर ही रुक गई और सिर झुकाए खड़ी हो गई। अर्णव उसे कुछ कहने को हुआ उससे पहले ही वहाँ एक रौबदार भारी भरकम आवाज गूंज उठी, वहाँ क्या खड़े हैं बरखुरदार, इधर आइए हमारे पास। ये अर्णव के दादू थे और अर्णव का स्वभाव, व्यक्तित्व सब उन्हीं पर गया था। दादू के बुलाने पर अर्णव के चेहरे पर डर के भाव उभर आए। धृति की हथेली छोड़ते हुए वो आगे बढ़ा और उनके पैर छूने को झुका, पर दादू ने उसके कंधों को पकड़कर उसे रोक दिया। पैर छूने की जरूरत नहीं, यहाँ हम आपको आशीर्वाद देने नहीं, आपकी खबर लेने आए हैं, दादू ने जरा गुस्से और नाराजगी से कहा, जिससे अर्णव की हालत और खराब होने लगी। उसने घबराते हुए कुछ कहने की कोशिश की। दादू, खबरदार जो आपने एक शब्द भी कहा। दादू ने बीच में ही उसे रोकते हुए चेतावनी भरी नजरों से घूरा तो अर्णव सिर झुकाते हुए चुप हो गया। उसके चेहरे पर घबराहट और शर्मिंदगी के भाव उभर आए थे। हमें आपसे ये उम्मीद नहीं थी अर्णव, आप तो गुरूर थे हमारा, कितना विश्वास था हमें आप पर आपकी इस हरकत ने हमें बहुत निराश किया है। दिल तो कर रहा है कि अच्छे से खबर ले आपकी, ताकि दोबारा कभी आपकी ऐसा कुछ करने की हिम्मत ना हो, दादाजी ने बेहद निराशा और नाराजगी से कहा और उस पर हाथ उठाते हुए मारने का भी नाटक किया। अर्णव तुरंत घबरा कर बोला, दादू प्लीज, अब मैं छोटा नहीं रह गया हूँ, सामने बीवी खड़ी है मेरी, कुछ तो इज्जत रहने दीजिए उसकी नजरों में मेरी। इज्जत की बात तो तुम करो ही मत अर्णव, तुम्हारी इस हरकत ने हमें और पूरे परिवार को कितना शर्मिंदा किया है, इसका एहसास भी नहीं है तुम्हें। सब दोस्त रिश्तेदार कल से फोन कर करके यही पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया जो घर के इकलौते बेटे को ऐसे सबसे छुपकर शादी करनी पड़ी। तुम्हारी इस हरकत का हमारे बिजनेस पर कितना बुरा असर पड़ा है और तुम्हें किसी की परवाह ही नहीं। भावेश जी, अर्णव के डैड काफी गुस्से में लग रहे थे। अर्णव पलट कर कुछ कह न सका क्योंकि जानता था कि गलती उसी की ही थी। भावेश जी चुप हुए तो दादी उसके पास चली आई और उसके कान पकड़कर ऐंठते हुए नाराजगी से बोली, तुम बीवी की बात करते हो, हम तो तुम्हारे बच्चों के सामने भी तुम्हारी गलती पर ऐसे ही तुम्हारे कान खींचेंगे और जरूरत पड़ी तो पिटाई भी करेंगे। बच्चे का जिक्र सुनकर अर्णव ने तिरछी निगाहों से धृति को देखा, जो एकदम से हड़बड़ा गई थी और उसके गाल शर्म से दहक उठे थे, कान टमाटर जैसे लाल हो गए थे। अर्णव उसको यूं शर्माते देखकर मन ही मन मुस्कुराया, फिर दादी से अपने कान छुड़वाते हुए बोला, दादी कान तो छोड़िए, दर्द हो रहा है, आराम से बैठकर मेरी बात सुनिए, आप सब तो आते ही बरस पड़े। तुमने हरकत ही ऐसी की है अर्णव, गुस्सा ना करें तो और क्या करें, तुम्हारी इस हरकत ने हमारी भावनाओं को बहुत ठेस पहुँचाई है, तुमसे हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी अर्णव। अरे अगर लड़की इतनी ही पसंद थी तो हमें कहते, हम कौन सा आपकी पसंद को मना कर देते, हम खुद आप दोनों की धूमधाम से शादी करवाते, पर आपने उनसे छुपकर शादी की, इतने महीने हो गए आपकी शादी को, इस दौरान एक बार घर भी आए आप, पर हमें इतनी बड़ी बात बताना जरूरी नहीं समझा, और हमें हमारे अपने बेटे की शादी के बारे में पता चला भी तो न्यूज़ से। आप क्या आपके परिवार की आपकी नज़रों में इतनी ही अहमियत नहीं कि उन्हें अपनी शादी की खबर खुद से दें, या आप अब भी हम सबको अंधेरे में ही रखना चाहते थे। शालिनी जी बेहद दुख और निराशा में डूबे हुए उससे शिकायत की। सच में अर्णव की इस हरकत ने उनके मन को बहुत ठेस पहुँचाई थी। उन्हें दुखी और उदास देखकर अर्णव बर्दाश्त नहीं कर सका। मॉम ऐसा नहीं है, उस वक्त हालात ऐसे थे कि मैं चाहकर भी आप सबको कुछ नहीं बता सका, मैं जल्दी ही खुद से आपको सब बताने वाला था। अर्णव की सफाई सुनकर धृति, जो तब से नजरें झुकाए खड़ी थी, उसकी रोषपूर्ण निगाहें अर्णव की ओर उठ गईं और लबों पर व्यंग्य भरी मुस्कान फैल गई थी। पर तभी उसे याद आया कि आकाश के जाने के सदमे में उसके डैड को हार्ट अटैक आया था और मॉम होश खो बैठी थी। शायद उनकी हेल्थ के कारण वो झूठी कहानी कर रहा है, क्योंकि जितना विश्वास और प्यार वो सब उस पर करते हैं, शायद सच वो बर्दाश्त न कर सकें। ये ख्याल मन में आते ही उसके चेहरे पर अजीब से दुख के भाव उभर आए और उसने एक बार फिर अपनी पलकें झुका लीं। बाकी सबने तो उस पर खास ध्यान नहीं दिया, पर अर्णव की दीदी अंजलि जी की नज़रों से कुछ बच न सका, क्योंकि वो तो तब से धृति को ही देख रही थी। कब बताने वाले थे अर्णव? तब जब सारी दुनिया को पता चल जाता कि हमारे बेटे ने शादी कर ली है, या तब जब तुम बाप बन जाते? और ऐसी कौन सी मजबूरी थी कि आपको इतनी बड़ी बात हमसे छुपानी पड़ी, अपने परिवार से छुपकर शादी करनी पड़ी? शालिनी जी के इस सवाल पर अर्णव पहले तो चुप्पी साध गया, फिर सिर झुकाते हुए बोला, मॉम ऐसा सवाल ना करें मुझसे जिसका जवाब मैं आपको ना दे सकूं। इसके बाद वो एक पल ठहरा और बेहद संजीदगी से बोला,
मैं जानता हूँ मेरे ऐसे छुपकर शादी करने और इतनी बड़ी बात आप सबसे छुपाने से आप सबके मन और भावनाओं को ठेस पहुँची है, पर मेरी अपनी वजह थी जो मैं आपको अभी नहीं बता सकता। फिर भी गलती हुई है मुझसे और दिल से शर्मिंदा हूँ, आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, आगे से दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा, बस मेरी इस गलती को माफ़ कर दीजिए और धृति को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लीजिए, वो बहुत अच्छी है। उसके घर वाले उससे नाराज थे, पर वो उनके सामने धृति की तरफदारी कर रहा था। ये देखकर सभी लोग कुछ हैरानी से एक दूसरे की शक्लें देखने लगे। धृति की हैरानी भरी निगाहें भी एक पल को उसकी ओर उठीं, पर अगले ही पल उसने अपना सिर झुका लिया। अर्णव, आपकी इस हरकत ने हमारे विश्वास को ठेस पहुंचाई है और हम इतनी आसानी से आपको माफ नहीं करेंगे, पर आपकी गलती की सजा उस मासूम को भी नहीं देंगे। आपने हमसे अपनी शादी छुपाई, इसलिए नाराज हम आपसे हैं, अपनी बहू से हमें कोई शिकायत नहीं, उन्हीं से मिलने तो हम यहाँ आए हैं, तो उनसे तो हम मिलेंगे ही, पर आप याद रखिएगा कि हमने आपको माफ नहीं किया है। दादाजी ने जैसे अपना फैसला सुनाया था, फिर धृति के पास चले आए। कमिंग सून।